ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराशि श्रीमद्भागवतम की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए। तो हम लोग श्रीमद्भागवतम का स्कंद पांचवें का अध्याय पांच और श्लोक नंबर 24 जो बोर्ड पर लिखा हुआ है पढ़ेंगे। आप मेरे बाद में रिपीट कर सकते हैं। धृता तनु उशति मे पुराणी ये नेह सत्वं परमं पवित्रम् शमोदम सत्यम अनुग्रहस्य तपस्तितिक्षानुभवस्य यत्र। धृता तनु उशति मे पुराणी ये नेह सत्वं परमं पवित्रम् शमोदम सत्यम अनुग्रहस्य तपस्तितिक्षानुभवस्य यत्र। शब्द बाय शब्द अर्थ। धृता दिव्य शिक्षा द्वारा धारण किया गया। तनु शरीर, उशति भौतिक कलुष से मुक्त, मैं मेरा, पुराणी शाश्वत, ये न जिससे, इह इस संसार में सत्वम सतोगुण परमम परम सर्वश्रेष्ठ पवित्रम पवित्र शमः मन का नियंत्रण दमः इंद्रियों का नियंत्रण सत्यम सत्य अनुग्रह अनुग्रह या कृपा च तथा तपः तपस्या तितिक्षा सहनशीलता अनुभव ईश्वर तथा जीवात्मा का बोध च तथा यत्र जिसमें। भावार्थ और तात्पर्य। अर्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वेद मेरे शाश्वत दिव्य शब्दावतार हैं, मतलब भगवान से ही सभी वेद निकले हैं। वो शब्द अवतार या शब्द ब्रह्म कहा जाता है, इसलिए वे शब्द ब्रह्म हैं। इस जगत में ब्राह्मण समस्त वेदों का सम्यक अध्ययन करते हैं और उनको आत्मसात कर लेते हैं। आत्मसात ने हृदयंगम कर लेते हैं, उनके हृदय में स्वभाव से वो आ जाता है। तो शब्द ब्रह्मों को सब ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मण या वैष्णव से ही इंडिकेशन है कि वे सबका अध्ययन करते हैं, मतलब हमें भी अध्ययन करना चाहिए और आत्मसात कर लेना, मतलब अपने डेली परिचर्या में या डेली यूज में उन्हें लेना चाहिए, डेली उपयोग में रोज अपने जीवन में उसे ढाल लेना चाहिए। अध्ययन ठीक है, पर अध्ययन के साथ साथ उन्हें मूर्तिमान होकर के कार्य रूप में लेना चाहिए, इसलिए उन्हें साक्षात मूर्त रूप वेद माना जाता है। ये शब्द ब्रह्मों को मूर्त रूप वेद माना जाता है, मतलब वेदों का भी मूर्ति है, वेदों का भी स्वरूप है। ब्राह्मण सतोगुणी होते हैं, फलस्वरूप उनमें श्रम दम सत्य के गुण पाए जाते हैं। सो तीन तरह के गुण, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण। तो ब्राह्मणों में सतोगुण ज्यादा रहता है, पर जो शुद्ध भक्त होते हैं उनमें किसी का भी मिक्सचर नहीं रहता, मतलब रजोगुण और तमोगुण का उसमें मिलावट नहीं है, वो शुद्ध सत्व या वसुदेव सत्व ब्राह्मणों में रहता है और उनमें ये गुण श्रम, श्रम का मतलब है यानी श्रम और दम, तो श्रम यानी अपने मन को कंट्रोल और दम यानी इंद्रियों को कंट्रोल, तो इंद्रियों का कंट्रोल होना और मन का भी कंट्रोल होना, और सत्य के गुण पाए जाते हैं। सत्य यानी परम सत्य आप कहिए, सत्य रिलेटिव टर्म है इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक संसार में सत्य है ना, कौन सा सत्य, पर जो पूर्ण सत्य है वो भगवान है। पूर्ण सत्य का मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ है ना, जिनसे कि सब चीजें निकली है, जिनसे सब उद्भूत हुआ है, सब चीजें यहां से निकलती है, उन्हें पूर्ण सत्य या एब्सोल्यूट ट्रूथ कहा जाता है। तो ये गुण ब्राह्मणों में पाए जाते हैं, श्रम मन का कंट्रोल, इंद्रियों का कंट्रोल, सत्य के गुण। अब वो वास्तविक सत्य क्या होता है उसके बाद में व्याख्या करेंगे, कि सत्य जो मीठा हो, किसी को दुख देने वाला ना हो, किसी को आगे बढ़ाने में मदद करता हो, बजाय कि उसे डिप्रेस करना या उसे नीचे धकालना, तो सत्य मतलब वो जो लोगों को भक्ति को और आगे बढ़ाए। यदि हम संसारिक बातें करेंगे, सिनेमा की कही या न्यूज़पेपर की, संसार में क्या होता है वो सत्य नहीं है, वो न्यूज़ हैं, लोग उसी पर विश्वास कर लेते हैं, पर भगवान ने जितना जो कुछ दिया है वही वास्तविक सत्य है। भगवान से जो संबंध हमें जोड़ाता है वो सत्य है, जो हमें भगवान से विलग करता हो, दूर करता हो, वो सत्य नहीं है। कितना ही मीठा हो, कितना ही अच्छा हो, पर हमारा वास्तविक पोजिशन, हम जीव भगवान के अंश हैं, और अंशी की सेवा न करने का हमें जो प्रेरणा नहीं देता, संसार में जो भटकाए रखता है, वो सत्य नहीं है, वो झूठी है, हम एक दम्भ ही कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों में मतलब उनका जो भी वाणी रहती है वो या तो चुप रहेंगे या बोलेंगे तो उस तरह का शब्द बोलेंगे जिससे हम भगवान की ओर प्रेरित हों, हमारा मन भगवान की ओर लगे। तो ये ब्राह्मण जो हैं वे वेदों का मूल अर्थ वर्णन करते हैं, मतलब जैसे मूल अर्थ का मतलब है कि वेदों का जो वास्तविक परपल्ट है, यथाविधि, जैसे प्रभुपाद जी ने भगवद्गीता यथाविधि लिखा, तो वो भी मतलब अनसन उनका ट्रांसलेशन करके, अनुवाद करके लोगों को गुमराह नहीं करते हैं। जो ब्राह्मण है वो मूल अर्थ मतलब ओरिजिनल जो मंतव्य रहा कहने वाले का, जैसे भगवद्गीता में कृष्ण ने अर्जुन को संबोधन करते हुए कहा तो अर्जुन ने जैसा समझा वैसा ही यदि वो ब्राह्मण भी समझाते हैं या वैष्णव समझाते हैं तब तो ठीक है, पर अपने मनरंगी उसमें कुछ अलग अपना टिंच, अपना कलर दे देते हैं तो वो सही नहीं है। वो तो मूल अर्थ का मतलब है कि जो कहने वाला है, जो बोलने वाला है, उसे जैसा उसने समझा, ओरिजिनल जो जिन्होंने सुना, जैसे ओरिजिनल सुनने वाला भगवद गीता को अर्जुन थे, अर्जुन ने जैसा समझा, भगवान को समर्पित किया, भगवान चाहते थे कि युद्ध हो, आतताइयों का नाश हो, और अर्जुन ने सब कुछ किया, वैसा ही किया जैसे भगवान चाहते थे, और वैसा ही यदि हम समझें मतलब मन ग्रंथ, जैसे कि कभी लड़ाई हुई नहीं है, कुरुक्षेत्र है ही नहीं, ये पांच जो पांडव हैं वो पांच इंद्रियां हैं, तो ये सब तरह का ट्रांसलेशन या अनुवाद करके लोगों को समझाना यानी उन्हें गुमराह करना है, ये सत्य नहीं है। मतलब श्लोक अभी संसार में कई लोग भगवद गीता का श्लोक लेते हैं पर अनुवाद करते हैं अपने मन से, अपनी मंतव्य देने के लिए लोगों से बातें करते हैं पर भगवान का वो मंतव्य नहीं है। तो हमें भगवान का मंतव्य ही जानना चाहिए, समझना चाहिए, इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो ट्रांसलेशन किया इससे कई लाखों लाखों भक्त बने हैं। जैसे भक्त भगवद गीता का भी जैसे प्रचार हो रहा है, गीता जयंती हुई और ये क्रिसमस के टाइम में या दिसंबर में, नवंबर दिसंबर जनवरी में होता है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा ये गीता दान करना चाहिए और लोगों को इसका सही अर्थ भी समझाना चाहिए। दान करना है ना स्वयं में भी समझना और दूसरों को भी समझाना गीता के माध्यम से, क्योंकि ये सार है सब चीज़ों का। तो ये ब्राह्मण लोग अनुग्रहवश समस्त बद्ध जीवों को वेदों के उद्देश्य का उपदेश देते हैं। वेदों का उपदेश क्या है ये ब्राह्मण बतलाते हैं कि वेदों का उद्देश्य क्या है। वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्या वेदांत कृत वेद विदा वेदेह चा। तो वेदों का उपदेश क्या है, भगवान को जानना, भगवान को समझना, भगवान की भक्ति में लगना, अपना जीवन का जो लक्ष्य है या हम जिस लिए बने हैं भगवान की भक्ति के लिए बने हैं, तो उस ओर उन्मुख होना, उस ओर जाना, वही वेदों का लक्ष्य है। वेदों का लक्ष्य, वेदों में कई साइंस दिए हुए हैं, हर तरह की वर्णन किया हुआ है, पर उनका मेन लक्ष्य है, क्योंकि सब लोग एकदम नहीं ले सकते, एकदम डायरेक्ट भक्ति नहीं लेंगे, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, संसार में कई युगों से भटकते आए हैं, तो हमें एकदम वो अपील नहीं होगा यदि डायरेक्ट कहेंगे कि भगवान को सरेंडर करो, किसने देखा है भगवान कौन है, हमने तो कभी जाना ही नहीं। तो वो लोगों में तो धीरे धीरे करके, धीरे धीरे, चिप बाय चिप, वो सुनते सुनते वो पवित्र होंगे। तो उन्हें सुनते रहना चाहिए, भगवान नाम लेते रहना चाहिए, भक्तों का संग करते रहना चाहिए, तो धीरे धीरे भगवान की ओर उन्मुख होंगे। मतलब लोग प्रश्न कर सकते हैं कि इतने मैंने कथाएं सुनी, इतनी बार मैंने माला चांट की, 40-50 साल से मैं कुछ असर नहीं हुआ, नहीं असर हो रहा है, पर हम इतने ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा और मार्जिन करना पड़ेगा। जैसे कि कोई बर्तन इतना काला हो गया है तो थोड़ा रगड़ने से या इवन एक घंटे रगड़ने से नहीं होगा, बार बार वो प्रक्रिया करना होगी तो हम शुद्ध हो सकते हैं। पर तरीका यही है, जैसे कि हमें वचनों के श्रीमुख से वेदों का उपदेश, गीता का उपदेश सुनना है और भगवान की सेवा में लगना है। तो ये भक्त लोग जो हैं, अनुग्रहवश समस्त बद्ध जीवों को, हम लोग बद्ध जीव हैं, एक तो नित्य मुक्त और नित्य बद्ध, दो तरह के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग सीधे ही भगवत धाम में जाते हैं, जहाँ से हमारा ओरिजिन कहाँ है, हम कहाँ से जन्म लिए, तटस्था शक्ति के हम अंश हैं, भगवान की कई शक्तियाँ हैं तो हम तटस्था शक्ति के अंश हैं। और कुछ जीव भगवान की ओर चले जाते हैं भगवत धाम में, और कुछ जीव संसार में आते हैं, संसार के जो आकर्षण है, संसार की चमक दमक जो है, चमक दमक से आकर्षित होकर के हम संसार की ओर चले आए हैं। और संसार में कई तरह की यातनाएं, कई तरह की इच्छाएं, ये संसार में हमारी इच्छाएं ही कई कारण है जो हमें संसार में बद्ध रखती है। हम यदि इच्छाएं भगवत संबंधी करेंगे तो हम संसार से मतलब संसार से हम पार होकर के, संसार को छोड़ करके भगवत धाम जा सकते हैं। वहीं जाने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए और वहीं हमें परम शांति मिलेगी। भगवान की गोद में ही बच्चे को शांति कब मिलेगी? जब बच्चे को माँ की गोद मिल जाए। वैसे ही हम भगवान के अंश हैं, हमें जब श्री भगवान की गोद मिलती है तभी हमें शांति मिलती है। ये शांति शारीरिक या शरीर या मन या इंद्रिय या बुद्धि की नहीं है, उससे कभी भी कुछ संतुष्ट नहीं हुआ है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी राज्य हैं, जितने भी प्लानिटरी सिस्टम हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, जितनी भी स्त्रियां भोग के लिए मान लो हों, तो भी कभी आदमी संतुष्ट नहीं होगा, उसे और चाहिए और चाहिए, क्योंकि संतुष्टि प्रदान करता ही नहीं है। यदि संतुष्ट हो जाए तो उसे आगे के और की आवश्यकता क्या है? पर वो संतुष्टि मिलती नहीं है। तो मिलेगी कब? जब आत्मा का भगवान से संबंध जुड़ेगा, भगवान की सेवा में आएंगे, भगवान की गोद में बैठेंगे, भगवान के सानिध्य में रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो उन्हें संतुष्टि मिलेगी। तो संसार में संतुष्टि के लिए खूब कार्य करना। कल मैंने प्रसादम रूम में बोर्ड पढ़ा कि जो लेजी इंटेलिजेंट है वो ज़्यादा अच्छा है, और लेजी जो मूर्ख है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। लेजी इंटेलिजेंस का मतलब कि हमें बहुत सारे संसारिक भौतिक कार्य नहीं करना है, उसी में रमते रहना। गधे के जैसे काम करेंगे तो हमें कोई संतुष्टि मिलेगी? लोग भौतिक संसार में रजोगुण से व्याप्त होकर के बहुत सारा, मतलब ये धंधा वो धंधा, उथल पुथल, कई तरह के काम करते रहते हैं, पर उससे उन्हें संतुष्टि मिलती नहीं है। मिलेगी कब? जब हम भगवत संबंधी विचार करेंगे, उस संबंधी बातचीत करेंगे, भगवत गीता भागवत का पठन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, हमारा जाने का लक्ष्य यदि पवित्र होगा तो हमें शांति मिलेगी। पर बाकी का किसी भी तरह से, तो लेजी इंटेलिजेंट होशियार सबसे ज़्यादा है कि वो संसारिक चीज़ों में रमते नहीं हैं, वो भगवान की सेवा के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो वेदों का उपदेश, वेदों का उपदेश ब्राह्मण लोग करते हैं या डिहोटी करते हैं, वे तपस्या तथा तितीक्षा का अभ्यास करते हैं। तप, तो तप क्या है और तितीक्षा क्या है? तप करना, ये भगवद गीता में तप के बारे में थोड़ा दिया गया है, तो कुछ मैं ये पढ़ने के बाद में आपको बताऊंगा कि तप मन का होता है, शरीर का होता है, इंद्रियों का होता है, तो वो तप कैसा है, और तितीक्षा कारुणिका, प्रभुपाद जी ने एक ड्यूटी का नाम तितीक्षा कारुणिका दिया। तितीक्षा यानी टॉलरेंस, हमें टॉलरेट करना चाहिए। हमें जो कुछ होता है संसार में, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, जीवन मरण या यश अपयश, जो कुछ मिलता है उसे हमने सहन करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म के वश ये सब आएगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो नित्यम तां स्थिति क्षव भारत। हे भारत, हे अर्जुन भरतवंशी, ये जैसे कि मात्रा स्पर्शा यानी शारीरिक संबंधी, जैसे हवा ठंडी लगती है तो हमें ठंड लगेगी, गर्म आएगी तो गर्मी लगेगी, तो हे कौन्तेय शीतोष्ण शीत और उष्ण ये लगते हैं, तो ये आगम पाइनो ये आते हैं और जाते हैं, ये परमण नहीं है। तो यहाँ की स्थिति संसार में परमण नहीं है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा इन सबसे अलग है। आत्मा का इस शरीर विषय संबंधों से कोई संबंध नहीं है, हमने संबंध मान रखा है, इसलिए हमें शरीर में जो होता है हम समझते हैं मुझे हो रहा है, दुख होना, सुख होना, धनवान बन जाना या किसी के द्वारा प्रताड़ित होना, ये आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। ये संबंध तदाम्यता, तदाम्यता है ना, एकीपन। जैसे कि किसी की बड़ी ऊंची गाड़ी है, उसमें कुछ लगता है तो आदमी सोचता है मुझे लग गया, जबकि उसे नहीं लग रहा है। इसी तरह से माँ और बच्चा, बच्चे में उसका इतना अधिनिवेश रहता है, इतना उसका लगाव रहता है कि बच्चे को होता है तो माँ को दुख होने लगता है। यदि बच्चे का पेट दर्द होता है तो माँ का भी पेट दर्द होता है, बच्चे का हेडेक होता है उसे भी होने लगता है। तो इसलिए कि ये हमें तादाम्यता इतनी एफर्ट कर रखी है उनसे कि उनके अपने जिन्हें हम प्यार करते हैं उनका दुख दर्द हमें महसूस होता है, तो वैसा होना नहीं चाहिए। भगवान का ही अच्छा क्योंकि भगवान यही चीज आप भगवान पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? यदि भगवान खुश हैं, हमारे इंद्रियों से की सेवा के द्वारा भगवान की इंद्रियां संतुष्ट हैं, तो हम अपने आप संतुष्ट होंगे, क्योंकि भगवान हमारी जो इंद्रियां हैं वो भगवान की सेवा के लिए ही बनी हुई है, और वो संतुष्ट होने से, क्योंकि भगवान के हम अंश हैं, इसलिए अंशी अंशी के सम खुश होने से अंश जो है अपने आप होता है। तो यही एक तरह का पीस फार्मूला है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कि सब चीजों का भोक्ता है ना, आनंद लेने वाला, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तप जो कुछ है, सर्वलोक महेश्वरम श्रोधम सर्वभूतानाम, भगवान जो है वो हमारे रियल वेलविशर हैं, संसार नहीं है। तो यदि हम भगवान को वेलविशर माने, भोक्ता माने, और जो कुछ कर रहे हैं उनके निमित्त यदि करेंगे तो उससे हमें शांति मिलेगी। तो तितिक्षा, जो कुछ हो रहा है संसार में हमें टॉलरेट करना चाहिए, हमें सहन करना चाहिए। जीवात्मा तथा परमेश्वर के पदों का अनुभव करते हैं, तो यही तपस्या और तितिक्षा का अभ्यास करके हम भगवान के पद चिन्ह पर चल सकते हैं, उनका अनुभव करेंगे। तो ये ब्राह्मणों के 8 गुण, सत्व, श्रम, दम, सत्य, अनुग्रह, तपस्या, तितिक्षा और अनुभव। तो सत्व यानी सत्य, सत्व से मतलब क्या है, परम सत्य जो हम बात कर रहे थे, तो वो सत्व गुण या परम सत्य यानी जिनसे की सब चीजें निकली है उसके बारे में जानना। श्रम यानी मन का शमन, मन का शमन यानी मन को निग्रह करना, मन को कंट्रोल करना, मन इधर उधर भगता रहता है तो मन को कंट्रोल करना, मतलब वो कई तरह के संकल्प और विकल्प करता है, मन कई चीजों पर लगता है। एक तो मन का जैसे आप कांच में आप देखते हैं फोटो, तो थोड़ी देर के लिए फिर बदल जाता है, उसमें परमानेंट नहीं रहता, और कुछ इंप्रेशन ऐसे हैं जो परमानेंट बने रहते हैं, जैसे फिल्म फोटो जैसे हो रही है कैमरा से, तो वो परमानेंट उसमें उसका इंप्रेशन बनता है। तो हमें परमानेंट इंप्रेशन संसार से नहीं बनाना है, आएंगे जाएंगे पर उसे मन को निश्चित और कैसे कंट्रोल करना ये भी हम चर्चा करेंगे। तो श्रम यानी मन का कंट्रोल, दम यानी इंद्रियों का कंट्रोल, जहां जहां इंद्रियां जाती हैं उन्हें वापस खींच करके भगवान की ओर लगाइए। जब उन्हें ऊंचा आनंद मिलेगा भगवान के सानिध्य से, तो छोटी छोटी चीजों को या सांसारिक विषय वासनाओं को छोड़ सकेंगे। सो दम यानी जबरदस्ती इंद्रियों का दमन नहीं, जब हायर टेस्ट मिलेगा, उच्च स्वाद मिलेगा, तो अपने आप इंद्रियां कंट्रोल होगी। जैसे बच्चे को यदि मान लो चाकू हाथ में ले रहा है, अपना नुकसान कर सकता है, पर उसे कुछ अच्छे खाने के लिए कैंडी, लड्डू या पिज्ज़ा या जो कुछ भी उसे पसंद है वो देंगे तो उसे छोड़ देगा वो। इसी तरह से हमें भी हायर टेस्ट भगवत संबंधी विषयों में पैदा करना चाहिए। आप कहेंगे कैसे पैदा करें, वो बार बार सुनने से उनमें आनंद आने लगेगा, क्योंकि रियल आनंद का सोर्स भगवत विषय ही है, भागवत है, भगवान के संबंध है, संसारिक विषय में आनंद क्यों लगता है, क्योंकि अभी हमें भगवत संबंधी आनंद नहीं आया है, उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। तो सत्व सम दम सत्य, सत्य है ना, जो मैंने किया कि जिससे परम सत्य या कम से कम सत्य वो जो मीठा हो, दूसरों के फायदे के लिए हो, और वास्तविक सत्य तो भगवत विषय संबंधी या भगवत ज्ञान, आप उन्हें जैसे हम कहते हैं जीवे दया, तो जीवे दया का मतलब उन्हें सत्यता क्या है कि भगवान ही हमारे परम पालक हैं, उन्हीं की सेवा हमें करना चाहिए, ये वास्तविक सत्य है। पर संसारिक सत्य वो मरा, वो पैदा हुआ, उसने शादी की, उसने डाइवोर्स कर लिया, या और कुछ जो चोरी की, जो कुछ हुआ, इससे हमारे जीव का आत्मा का कोई संबंध नहीं है। हम करते रहते हैं सब विषय वासना और इनसे हमारा कोई भी संबंध नहीं है। तो ये सत्य अनुग्रह यानी कृपा करना, अनुग्रह कैसे करना, जैसे जीवों पर अनुग्रह यानी उन्हें भगवत भक्ति दीजिए, तपस्या भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, मन की तपस्या, बुद्धि की तपस्या, इंद्रियों की तपस्या, तितिक्षा यानी हमें टॉलरेट करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो तितिक्षा और अनुभव, अनुभव भगवत संबंधी अनुभव, तो ये सब जो है ईश्वर और जीवात्मा का बोध होता है, इसी को अनुभव कहते हैं। यानी भगवान का अनुभव यानी हमें किसका अनुभव होना, ईश्वर का और जीवात्मा का बोध, ये अनुभव, ये समस्त जीवों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। तो ये जो दिया हुआ ये उपदेश, ये उपदेश ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को दिया गया है, ये जो अभी मैंने जो पढ़ा। तो ये अब ऋषभदेव कौन थे ये तो आप जानते ही हैं, ये भगवान ऋषभ भगवान के ही अवतार हैं, सत्ता और शेष अवतार, और वो अपने 100 पुत्रों को उपदेश रूप में दे रहे हैं कि ब्राह्मणों को उच्च समझो, उनकी सेवा पूजा कीजिए। और ब्राह्मण यानी वैष्णव, पहले कुछ ब्राह्मणों की सभा हुई थी हरे कृष्ण, तो उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को बुलाया गया था। तो लोग वंश से यानी पैदाइशी ब्राह्मण माने जाते थे कि जो जन्म से जो है, तो वो वास्तु, तो समझो जो ब्राह्मण परिवार में ही ब्राह्मण पैदा हो सकता है। तो इनका काफी बहस हुई, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने पूरी किताब लिखी है वैष्णविज्म एंड ब्राह्मणिज्म। तो पहले तो उन्होंने ब्राह्मण की बहुत जुलाजाइस है, उनकी बहुत उन्हें बहुत अच्छा बतलाया कि ब्राह्मण होना बहुत अच्छा है, पर बाद में बतलाया कि जो कास्ट ब्राह्मण है वो भगवद गीता का या भागवत का या अपने वेदों का मंतव्य नहीं है। यहाँ शब्द ब्रह्म शब्द दिया है, शब्द ब्रह्म यानी भगवान के श्रीमुख से जो स्वर निकले हैं, जो शब्द निकले हैं, कैसे निकले हैं कि तेने हृदया ब्रह्मा आदि कवे मोहयंती यत सूर्य। तो ब्रह्मा जी को सबसे पहले माध्यम बना करके भगवान ने वेदों का वो बांसुरी के रूप में उनके फ्लूट साउंड से जो दिया गया, जिससे ब्रह्मा ने जो समझा वो शब्द ब्रह्म है। और गायत्री भी जो भगवान से गायत्री माता है, वेद माता उन्हें कहा जाता है। तो वेदों का ज्ञान जो ब्रह्मा जी ने सुना बांसुरी के शब्द द्वारा, सो बांसुरी का जो स्वर नाद है वही गायत्री है। तो ये श्रुति स्मृति पुराण, तो श्रुति यानी जो श्रवण करके, पहले लोग श्रवण करके याद कर लेते थे, तो उसमें आता है समस्त मतलब वेद, 4 जैसे वेद हैं, इसके बाद में 108 उपनिषद, वेदांत सूत्र, तो ये इन्हीं को हम श्रुति कहते हैं। और स्मृति यानी इनके स्मृति के आधार से इन्हें याद करके जो लिखा गया है, इन्हीं को माध्यम बना करके, इन्हीं के मंतव्य को सरल रूप में समझा करके जो लिखे गए हैं जैसे पुराण वगैरह, वो स्मृति शास्त्र हैं। तो श्रुति स्मृति, तो ब्राह्मण यानी वास्तव में वैष्णव, जो भगवान का भक्त हो। तो आप प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं यह ब्राह्मण का सही वर्णन है। ब्राह्मण वह है जिसने मन तथा इंद्रियों को वश में करके वैदिक निष्कर्षों को आत्मसात कर लिया हो, वह वेदों का सही सही कथन करता है। इसी की पुष्टि भगवद्गीता 15:15 में हुई है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वैर आमेव वेद्या वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। तो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में एकदम इतने पास में क्लोज परमात्मा के रूप में भगवान रहते हैं, मत्त स्मृति मेरे से ही उस परमात्मा से ही मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मुझे जो कुछ रिमेम्बरेंस फॉरगेटफुलनेस और अपोहन में फॉरगेटफुलनेस और ज्ञान नॉलेज, ये तीनों भगवान से आते हैं, वही हमें बुलाते हैं, वही हमें याद दिलाते हैं और वही हमें ज्ञान देते हैं कि कैसे संसार में चलना, क्या करना। तो इसलिए यदि हम भगवान की ओर मुड़ेंगे तो हमें अपने आप ही वो ज्ञान आएगा जिससे कि हम भगवान की ओर अग्रसित हों, भगवान की ओर मुड़े। और कृष्ण भक्त में ही सभी गुण है, हराव अभक्तक्ष कतो महद्गुण मनोरथेना धावतो सो बही। सो सर्वेर गुणेर तत्र समास होते सुरा। तो जो सब गुण जो भक्त हैं उनमें सब तरह के गुण आ जाते हैं, पर जो भक्त नहीं है उसमें संसारिक गुण कितने भी हों, पीएचडी डिग्री हो, बहुत सारा धनवान हो, सुंदर हो, सब कुछ उसके कमांड में हो, पर वो यहीं धरे रहने वाले हैं, वो वास्तव में शून्य है, कई शून्य से कुछ होने वाला नहीं है। पर जब तक भगवान न हो जो एक है तभी शून्यों का महत्व है, मतलब धनवान, रूपवान, गुणवान, बड़ी पोजिशन, बड़ा कंट्रोल, ये तभी तक सार्थक हैं जब भगवान की भक्ति में लगे हुए हो। यशास्ति भक्ति भगवत अकंचिना सर्वैर गुणैर तत्र समासते सुरा। सब देवताओं के सभी गुण उसमें आ जाते हैं। हराव अभक्तश कुतो महद्गुण, जो अभक्त है उसमें कौन सा बड़ा गुण है, क्योंकि वो मन के घोड़े पर बैठ करके दौड़ता है और मन की क्या है, गति अधोगति रहती है, मन नीचे की ओर जाता है, जैसे गंगा बड़ी तेजी से समुद्र में नीचे की ओर बहती है, वैसे मन भी विषय वास्तव में भक्ता है। तो मन को ट्रेन करना चाहिए, मन को बुद्धि के द्वारा संयमित करना चाहिए। तो किससे, वैराग्य न त्याग और वैराग्य से, या ज्ञान और वैराग्य से वह कंट्रोल हो सकता है मन। तो इसके बारे में भगवद गीता के हम कुछ श्लोक पढ़ेंगे। सो वेदों के अध्ययन से श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति का पता चलता है कि भगवान कितने बड़े हैं, वो मानव नहीं है, हम उन्हें न समझे कि भगवान हमारे जैसे हैं। भगवद गीता में क्या श्लोक है, जब भगवान मनुष्य शरीर लेते हैं तो जो मूर्ख हैं वो हंसी उड़ाते हैं, पर हम भगवान नहीं है न, भले वो रूप उनका मनुष्य जैसा हो, या कभी जैसे कि नरसिंहदेव वो लायन और आदमी के दोनों का शरीर है, या कभी फिश इनकार्नेशन में आते हैं, पर भगवान हम और भगवान में कई जमीन आसमान का अंतर है। तो श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति का हमें पढ़ना चाहिए कि भगवान की स्तुतियां वगैरह के, भगवान क्या हैं, कौन है और कैसे उन्हें सरेंडर करना। जो वेदों के सार को आत्मसात कर ले वही सत्य का उपदेश कर सकता है। वेदों के जिन्होंने सार को समझा, और सार क्या है, भगवत सेवा में लगना, हम भगवान के अंश हैं, अंशी की सेवा करना, ये वेदों का सार है, भक्ति करना। तो भगवान बद्ध जीवों पर सदैव हैं, क्योंकि वे कृष्ण भक्ति से परिचित न होने के कारण संसार के तीन प्रकार के तापों को भोगते हैं। तो भगवान इतने कंपेशनेट हैं, मतलब उन पर इतनी दया करते हैं सज्जीवों पर, कि कृष्ण भक्ति से हम परिचित न होने के कारण तीन प्रकार के तापों को भोगते हैं। तो भगवान को दुख होता है कि मेरे बच्चे इस संसार में तड़प रहे हैं, आदि देवी का आध्यात्मिक भौतिक। आप कहेंगे कि भगवान को दुख हो रहा है तो दूर क्यों नहीं करते, पर उनकी विधि दूर करने की अलग है, उनकी जो विधि है वही वास्तविक विधि है। हम अपने मन से सोचते हैं कि मैं एकदम, कोई गरीब आदमी चाहेगा मैं एकदम धनवान बन जाऊंगा, हो सकता है कि उसका हार्ट फेल हो जाए, मतलब ऐसा हुआ है, बड़ी लॉटरी निकली और हार्ट फेल हुआ। तो ये नहीं है कि हम अपने मन में जो सोचे वही पूरा कर दें, तो भगवान हमें मन के अनुसार नहीं देते। देवी देवता आपको दे भी दें, पर कृष्ण जिसमें हमारा परम कल्याण हो, हम भगवान की ओर मुड़े, वही हमें देते हैं। तो भगवान जो कुछ करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं, वो हमारे श्रोध हैं, वेलविशर हैं, वो हमारे दुख को से तड़पते हैं, जैसे माँ या बाप अपने बच्चे के दुख से देख करके तड़पते हैं। प्रभुपाद भी इतने कंपेशनेट थे कि लोगों की दशा देखी कि कितने संसार में गिर रहे हैं, उनके हृदय में परम दयालुता थी। तो वैसे ही सभी वैष्णवों में, वैष्णव है ने वैष्णव जनतो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रहे, जो पीर पराई को जानते हैं वही वास्तव में वैष्णव है, कि दूसरों को दुख दर्द को अपना दुख दर्द माने। पर ये जीव दया का ये मतलब नहीं, उन्हें रोटी कपड़ा मकान मात्र दे दो तो जीव दया हो गई। वास्तविक जीव दया उन्हें भगवान की ओर उन्मुख करना, भगवत भक्ति देना, भगवान से सानिध्य करवाना। तो वही, क्योंकि मान लो सब कुछ दे दिया तो फिर अगला जन्म फिर वही कभी दुख, हम हो सकता है कि इतर प्राणी बने, जीव जंतु बने, मतलब झाड़ वृक्ष या सांप बिच्छू या कई तरह के भयानक हमें शरीर ग्रहण करना पड़ेगा तो उसमें दुख ही दुख है, मनुष्य जीवन में भी दुख है क्योंकि हम कल का नहीं जानते, कब जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो कौन आनंदित रह सकता है। इसलिए वास्तविक जीव दया क्या है, भगवान की ओर उन्मुख करना, वो रियल जीव दया, जीव दया नामे रुचि और वैष्णव की सेवा, ये तीन चीज चैतन्य महाप्रभु ने सार दिया है चैतन्य चरितामृत का, कि यदि आप तीन पालन करते हैं तो जीव दया मतलब उन्हें भक्ति दीजिए। तो इस मंदिर में आप प्रभुपाद जी ने सबको भगवान की ओर मोड़ा, इसलिए वो सबसे बड़ी जीव दया है। खाना खिलाएंगे शाम को फिर भूखे होंगे, कपड़ा पहनाएंगे ठंड लग रही है, माना आपने कंबल ओढ़ा दिया पर कितने समय तक चलेगा, फिर ठंड तो लगेगी, अगले साल फिर ठंड आएगी, इसलिए वो ठीक है पर सबसे ज्यादा अच्छा है विद्यादान। आप उन्हें भगवद गीता का उपदेश दीजिए, उन्हें बैठाइए, प्रसाद दीजिए। आप कहेंगे तो असर हो नहीं रहा है, तो धीरे धीरे असर होगा, आप प्रसाद दीजिए। भगवान सम है, सब जीवों के प्रति समानता है, ये नहीं कि दुष्टों को, वो कहते हैं कि दुष्टों को मारने के लिए आते हैं, परित्राणाय साधु नाम विनाश आय च दुष्कृता, पर उनके विनाश में भी उनकी बड़प्पन है, विनाश में भी जीवों पर दया है। विनाश करने से ये नहीं कि वो खत्म हो गए, मतलब भगवान मार रहे हैं टाड़का को या किसी को या जो भी हो, जितने भी असुर आए, पर वास्तव में भगवान की भी परम दया है, ये नहीं मानना कि वो दया नहीं है। पर देवता लोग जब ऐसा करते हैं तो वो उनकी दया नहीं है, वो कर्म के वशीभूत होते हैं, जिन्होंने जैसा किया वैसा रिजल्ट देते हैं, पर भगवान के जैसा नहीं, उनमें इतना गहरापन अपनापन नहीं रहता जैसे भगवान में है। सो श्री कृष्ण स्वयं बद्ध जीवों को आध्यात्मिक जीवन के मूल्यों का सदुपेश देने के लिए वैकुंठ से इस ब्रह्मांड में आते हैं। तो भगवान जब आते हैं तो जीवों को तारने के लिए, जैसे गीता को उपदेश दिया ब्रह्मा जी के माध्यम से, उन्होंने सब वेदों का हमें ज्ञान दिया, भागवतम पुराण जैसे वो वही लिखने के रूप से, जैसे ये भगवद गीता वगैरह जैसी, या भागवतम तो ये जिन्होंने व्यास जी ने जैसे लिखी है, तो वो व्यासदेव के रूप में लिटरेरी इनकारनेशन रूप में आते हैं ताकि हम भगवान की ओर मुड़ सकें। तो वो वैकुंठ से यहाँ आते हैं हमें अपने धाम में ले जाने के लिए, वे उन्हें श्री कृष्ण में समर्पण के लिए प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार से ब्राह्मण भी यही कार्य करते हैं। तो ब्राह्मण और भगवान में क्या अंतर रहा, ब्राह्मण भी वही करते हैं, मतलब वैष्णव जन भी लोगों को तारते हैं, लोगों को ले जाते हैं, और भगवान भी वही करते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है और कौन बड़ा है और क्यों, कोई बतलाएगा? कि भगवान भी, जैसे यहां लिखा है कि बद्ध जीवों को आध्यात्मिक जीवन के मूल्यों को उपदेश देने के लिए भगवान वैकुंठ से इस ब्रह्मांड में आते हैं, और ऐसे वैष्णव जन भी यही कार्य करते हैं। तो दोनों के कार्यों में अंतर है, अंतर यही है कि भगवान जबरदस्ती नहीं करते, यदि वो जैसे उनकी जो सूक्ष्म उनमें स्वतंत्रता भगवान ने दी है, माइन्यूट इंडिपेंडेंस, तो माइन्यूट इंडिपेंडेंस का हम मिसयूज करने के कारण से, हम गलत जगह भी, मतलब इंडिपेंडेंस हमें दी है भगवान ने तो हम उसे मिसयूज करने के कारण से, भगवान ने कहा मेरा नाम लो, हम नाम के लेने की जगह संसारिक नाम ले रहे हैं, संसारिक जीवन बिता रहे हैं। पर वैष्णव जन है वो उन्हें, मतलब जब भगवान जबरदस्ती नहीं करते पर वैष्णव जन करेंगे, अरे तू ऐसा क्यों कर रहा है, ये कर, ये नीचे गिरेगा। तो इस तरह से वैष्णव में दया भगवान से भी बढ़कर के है। क्यों है? क्योंकि वो उसे बार बार अपने सही रास्ते पर लगाएंगे। भगवान ने कहा ऐसे खून पीने का है तो उसे चीता बना देंगे, ऐसे नग्न रहने का है, शरीर दिखाने का है, झाड़ बना देंगे, पड़े रहो पांच दस दस हजार साल तक। कैलिफोर्निया में ऐसी जगह है जहां जहां 50-50 साल से मतलब झाड़ बने हुए हैं। तो इस तरह से कहने का ही मतलब है कि भगवान फोर्स नहीं करते, जबकि वैष्णव जन फोर्स करते हैं। वैदिक आदेशों को आत्मसात करके बद्ध जीवों को उबारने में वे परमेश्वर के सहायक बनते हैं। अपने उच्च सत्व गुण के कारण ब्राह्मण परमेश्वर को परम प्रिय है, वे इस भौतिक जगत में जीव के परोपकार हेतु कार्य करते हैं। तो परोपकार आय सताम विभूषित, तो परोपकार ही संतों का आभूषण है, कि दूसरों पर जीव दया, दूसरों पर और परोपकार यानी भगवान की भक्ति करना। तो थोड़े शोक इसी बारे में जो मैंने बतलाया सब कुछ भगवद गीता में श्लोकों के द्वारा मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। यही स्वस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवच आद्य आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। यानी जो यहाँ का जो आनंद जो है वो संस्पर्श के कारण से, संस्पर्श के कारण से, यानी जैसे कि खुजली की बीमारी है, आप खुजलाएंगे आपको अच्छा लगेगा, पर होगा क्या, बीमारी बढ़ेगी, बीमारी अच्छी नहीं होगी। तो ये ही दुख का घर है कि हम अपने इंद्रिय जनित सुख चाहते हैं, ये दुख का बिगिनिंग है, दुख का तो आद्य दुख योना यानी योनि यानी बर्थ प्लेस। दुख का बर्थ प्लेस क्या है, सुख की इच्छा करना। यदि हम सुखी रहना चाहेंगे, होना चाहेंगे भगवान से अलग, तो हमें दुख मिलेगा। सुख का परिणाम अंत में, सुख चाहने का परिणाम भी अंत में दुख ही है। मतलब ये आप लोग कि सुख चाहने से दुख कैसे मिलेगा, पर हर चीज का अंत दुख में होता है। और यदि हम भगवत संबंधी भजन करेंगे उसमें भले ही तपस्या करना पड़े, वो हमें सुख देगा और परमानेंट सुख देगा। तो मतलब इंद्रिय जनित जो सुख है, संस्पर्श जब होगा, वो दुख का बर्थ प्लेस है। भोगा यानी आनंद लेना, आनंद लेने की जहां इच्छा हुई संसारिक आनंद, तो वो दुख का बर्थ, हमने दुख को पैदा किया। योनि यानी ओम, ओम यानी माता के जो गर्भ होता है, तो दुख का गर्भ क्या है, सुख की इच्छा करना। संसार में जितनी लड़ाइयां जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, सब लोग आनंद लेना, भौतिक आनंद, बड़े तेजी से भौतिक आनंद की ओर जा रहे हैं। तो मतलब हम समझते हैं कि ये भौतिक आनंद, जैसे मैं अमेरिका में रहता हूँ, वहाँ रहना या वहाँ सब तरह के सुख सुविधाएं हैं, तनख्वाह ज़्यादा मिलती है, कारों में घूमते हैं सब, सब अच्छे बंगलों में रहते हैं, पर वास्तव में मतलब मैं भी वहाँ 47 वर्ष से रह रहा हूँ, पर वो दुख का ही घर है। सभी लोग अत्यंत तो दुखित हैं। हॉस्पिटल्स बड़े बड़े साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स हैं, उनमें गाड़ियां भी चलती हैं अंदर हॉस्पिटल के अंदर। मतलब कहने का ये है कि सभी मानसिक दुख से पीड़ित हैं। भौतिक सुख मिला भी, पर यदि मानसिक दुख में डूबा है तो भौतिक सुख लगेगा ही नहीं अच्छा। रात में नींद नहीं आती, नींद के लिए दवाई लो, उठने के लिए उनका दवाई चाहिए, काम करने के लिए कुछ दवाई चाहिए, उनका कोई पारिवारिक जीवन नहीं है। ये आध्यात्मिक, ये भारतवर्ष है, ये भी उसकी ओर तेजी से दौड़ रहा है, पर ये सही नहीं है। भारतवर्ष ये मतलब कर्म भूमि है, यहाँ भगवान संबंधी भगवत संबंधी कार्य करके संसार को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। और कई लोग पहले चीन से या रोम से या ग्रीस से लोग आते थे अपना ज्ञान सीखने के लिए भगवत गीता का, पर अब वो लोगों ने सब भुला दिया है, अब ये मैकेनिकल युग में आ गए हैं, पर ये हमें नीचे गिरा रहा है। तो हमें अपने वास्तविक जो प्रभुपाद बेसिक्स, सिंपल लिविंग और जो मैंने सरलता, तो इन चीज़ों को अपने जीवन में लाना चाहिए। जो वैष्णवों के या भक्तों के जुगण होते हैं, वो उसी से हमें परमानेंट हैप्पीनेस, हमेशा हमेशा का आनंद मिल सकता है। ये भौतिकवाद की तरफ दौड़ने से आनंदित कभी नहीं हो सकते। तो आद्यंतवंत कौन थे, ये इसका बिगिनिंग है और एंड है। किसका, ये संस्पर्श यानी टच से इंद्रिय जनित इंद्रियों को विषय के संपर्क में लाना, इससे जो वो जो दुख है, तो इससे जो बुद्धिमान व्यक्ति उसमें रमण नहीं करता, न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। वो किसमें रमण करते हैं, यो सत्यानंदम चिदात्मनि, मतलब भगवान के में ही आनंद लेते हैं, भगवत संबंधी विषय में आनंद लेते हैं। मैंने आपको स्फुरणा, मन का स्फुरणा और संकल्प का बतलाया था कि स्फुरणा यानी उसमें जैसे आप मिरर में देखते हैं, आते जाते रहते हैं, आप मिरर में कई तरह के चित्र, जैसे कहा आप मिरर लगा दो, जो चलते फिरते जाएंगे उसमें इंप्रेशन आता है, पर हमेशा नहीं रहता। और जो संकल्प जो है वो फिल्म की तरफ है, जैसे आपने फिल्म करके रिकॉर्ड कर लिया, वैसे ही स्फुरणा में मतलब संकल्प से आप उसमें तो रिकॉर्ड यानी ज्यादा समय तक इंप्रेशन बना रहता है। तो वो इंप्रेशन हमें संसार में ज्यादा नहीं बनाना है, मतलब हमें इंप्रेशन भगवान की भक्ति में भगवान की ओर जाने के लिए बनाना है। तो ये मन को कैसे कंट्रोल करना, क्योंकि जो मन के लिए क्या इसमें लिखा हुआ है, मन को कंट्रोल करने के लिए क्या कहेंगे, सब शम, शम यानी मन का कंट्रोल, दम यानी इंद्रियों का कंट्रोल। तो मन और इंद्रिया अलग अलग हैं। तो चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्रणम तस्याहम निग्रह मन्ने वायुरिव सुदुष्करम। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि मन बड़ा चंचल है, कैसे उसे संकल्प विकल्प ये करना, मन किसी में लग गया तो उसी को पागल के जैसे पूरा जीवन लगा देते हैं। किसी लड़की का लड़के में या लड़का का लड़के में लग गया मन तो वो उसी की तरफ उसका मन रात दिन विचार में रहता है कि मैं कैसे प्राप्त करूं, कैसे इसको मैं भोगूं। तो वो तो ऐसे मन को कैसे कंट्रोल में लाना जो कि एक मिनट में कम से कम 100 इंप्रेशन बना लेता है, घूमता ही रहता है। तो ये क्योंकि बल भाव ये मन जो है प्रमाथी बलवत दृढ़म, प्रमाथी यानी ये विचलित करने वाला और दृढ़ बिल्कुल दृढ़ है उस खींचने वाला, खींचता है जबरदस्ती खींचता है, न चाहे तो भी खींचता है। तस्याम निग्रह मन ने वायर इव सुदुष्करम। तो उसको कंट्रोल करना, मुझे तो ये लगता है ऐसा अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि हवा को एक बार कंट्रोल कर लो, पर मन को कंट्रोल नहीं करते। तो भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च ग्रह्यते। तो भगवान सुझाते हैं, समझाते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा संभव है। वैराग्य अभ्यास यानी कृष्ण भावनामृत का अभ्यास। कृष्ण भावनामृत का यदि हम अभ्यास करेंगे, मतलब माला जपना, भागवत सुनना, क्लास में आना, सवेर उठना, मंगल आरती में आना, तो ये तरह का अभ्यास करते रहेंगे तो भगवान की नवदा भक्ति का आचरण करेंगे तो कृष्ण के विषय में श्रवण करेंगे तो ये क्या है, अभ्यास है। और अभ्यास और वैराग्य क्या है, सांसारिक विषय वासनाओं से वैराग्य, पदार्थ से विरक्ति, मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। तो कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति, परे यानी ट्रांसेंडेंटल दिव्य, उसकी दिव्य या आध्यात्मिक तुष्टि हमें मिलेगी, वही आत्मा चाह रहा है। क्यों, भगवान के अंश होने से हम आध्यात्मिक तुष्टि चाहते हैं, संसारिक तुष्टि से हमें आनंद नहीं मिलेगा, वो बहुत टेम्पररी है। जैसे हमें प्रत्येक कौर के साथ तुष्टि पुष्टि और सुधा की निवृत्ति होती है, इसी तरह से भगवान की जपने से, भगवत संबंधी ज्ञान प्राप्त करने से हमें भी आत्मा को तुष्टि पुष्टि और सांसारिक विषय वासना से हम छूटने लगते हैं। जैसे भूख मिट जाती है और कुछ आप नहीं खा पाएंगे, इसी तरह से हम सांसारिक विषय वासना से हम दूर होते रहेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण के कार्यकलाओं का श्रवण, ये हमें यही उसका रियल उपचार है। भगवान के बारे में सुनना मतलब जिसकी भगवत संबंधी विषय में रुचि है उसे फिर संसारिक विषय में रुचि उसकी खत्म हो जाएगी। अब ये इसी तरह से जो इसमें 8 ब्राह्मणों वैष्णवों में क्या होते हैं, तो भगवत गीता में भी 13वें अध्याय में ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान के बारे में दिया गया है कि विनम्रता, दम्भहीनता नम्र बनना, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, आर्जवम, आर्जवम यानी सरलता को कहते हैं, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, जो प्रामाणिक गुरु है मतलब जो भगवान के संबंधी बारे में जिसके जानकारी है और वो अपने जीवन में फॉलो करता हो, पवित्रता मतलब मन की पवित्रता होगी भगवत नाम लेने से, और शारीरिक पवित्रता होगी स्नान वगैरह शुद्ध होने से, तो स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में दुख देखना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, कि ये बार बार पैदा होना। कई लोग तो कहते हैं बार बार हो तो क्या खराबी है, बार बार हम पैदा हो सकते हैं और वैसे वैसे क्यों रहना, कुत्ते बिल्ली सब बनो वो भी आनंद ले रहे हैं, पर वो लोग वास्तविकता नहीं जानते कि कितना उन्हें दुख में और कितने उनके पीछे। जैसे मान लो कोई से डियर है, बड़े अच्छे चाल से चलता है, बड़ा सुंदर है, आराम से घास चरता है, पर कब प्रीडेटर आ जाए, कब उसे शेर वगैरह आकर के खा ले, और कब हमारे यहाँ इतने ज़्यादा डियर होते हैं कि वो कारें निकली और कार से कुचल जाते हैं, या कभी कूदते हैं कार के डर से तो वो अटक जाते हैं, या पूरा जो बीच में रोडों के बीच में जो रहता है डिवाइड करने वाला डिवाइडर उससे टकरा करके मर जाते हैं और कारों से कुचले जाते हैं। मतलब इतनी बुरी तरह से, और ऐसा नहीं कि जानबूझ करके करते हो, पर एकदम कूद करके सामने आ जाते हैं और उनकी मतलब भेड़ चाल जैसे रहती है, एक डेर आए तो दूसरे भी उसके पीछे पीछे आएगा, वो भी कुचला करके मर जाएगा। तो आप समझिए ऐसे सब जीवों का यही हाल है। तो कहने का मतलब यही है कि हमें वास्तविक सुख कहाँ है वो यदि मनुष्य जीवन मिला तो उसे भगवत भक्ति में लगाना, क्योंकि कुत्ते बिल्ली ये काम नहीं कर सकते। सो इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, सभी लोग सोचते हैं कि मैं इंद्रिय तृप्ति करूं, वो उनका परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य ने हमें संसार से वैराग्य होना, मतलब संसारिक सुख की इच्छा नहीं करना, ये नहीं कि घर नहीं होना या शादी नहीं करना, पर उनमें अटैचमेंट नहीं होना, संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, वो मेरा है, मी एंड माइन, मैं और मेरा, यही हमें संसार में भटकाए रखता है, मतलब मेरे से जो संबंधित है वो मेरे हैं, बाकी के मेरे से कोई संबंध नहीं है। पर सब जीवों में दया करना, सब जीवों में बराबरी का देखना, वो एक अलग चीज है, वही हमें भगवत भगवान की ओर उन्मुख करती है। अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मतलब गलत दुर्घटना की भी सूचना मिली या किसी की मृत्यु मिली उसमें भी संभाव रखना, क्योंकि सभी को अपने अपने कर्म के अनुसार जाना पड़ता है, तो उसमें एकदम शॉक लगना या कुछ मान लो कुछ अच्छी घटना हुई तो उससे एकदम खूब पुलकित होकर के वो भी सही नहीं है, ठीक नहीं है। मतलब कुछ दुख हुआ तो एकदम ऐसे जैसे कि मर गए हो, और सुख हुआ तो ऐसा कि बस मेरा बराबर कोई सुखी नहीं है, फिर उसे दुख जल्दी मिलेगा, मतलब उसे जब थोड़ा भी दुख होगा तो उसे दुखी ज्यादा होना पड़ेगा। इसलिए हमें सब में संभाव रहना चाहिए। मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव। अब ये कहेंगे एकांत स्थान में, हाँ, क्योंकि ये संसार में हम विषय वासनाओं की बातें करेंगे, संसारिक बातों में लगे रहेंगे, तो उससे इच्छा होना चाहिए कि हम एकांत में रहें, मतलब बोले नहीं, बोलने से मतलब भगवत संबंधी विषय ही बोले, उन्हीं को सुने, उन्हीं को पढ़ें, और संसारिक बातें करते रहेंगे, पॉलिटिकल बातें करते रहेंगे, या कैसे खूब कमा लेना, कैसे अच्छे रहना, कैसे किसी को लूटना, कैसे किसी को धोखा देना, ये करते रहेंगे तो हमें इस संसार में भटकना पड़ेगा और कई तरह के जीव जन्म लेना पड़ेंगे। जन समूह से विलगाव, अलग रहना, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना कि आत्म साक्षात्कार यानी भगवान का सानिध्य, कृष्ण के साथ हमारा सानिध्य कैसे हो, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन, उसको महत्ता देना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं, इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। सो अब अलग अलग इनकी व्याख्या, वो तो लंबी चौड़ी विषय है। अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्य को विपत्ति में न डालना। सहिष्णुता एक शांति, क्षमा में जो क्ष होता है, तो उसका शांति का मतलब क्या है? अपमान और तिरस्कार को सहन लेना, सहिष्णुता को शांति कहते हैं। आर्जवम यानी सरलता, सरलता यानी बोलने में सरलता या मन में बुद्धि में सरलता, तो सरल पाना आना, पवित्रता, इसी को शौच कहते हैं, शौच्यम अनिवार्य। पवित्रता आंतरिक और बाह्य होती है, आंतरिक कृष्ण नाम जपने से होती है, बाह्य पवित्रता हम स्नान वगैरह करने से होती है, शुद्ध भोजन करने से ये बाहरी स्वच्छता होती है। और ऐस्थर्यम दृढ़ता का आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने में मनुष्य को दृढ़ संकल्प होना चाहिए। मिथ्या फॉल्स ईगो का क्या कहते हैं, फॉल्स ईगो का अर्थ है क्या है, फॉल्स ईगो या हमें आत्मा को या शरीर को आत्मा मान लेना, आई एम गॉड, दैट इज ऑल्सो फॉल्स ईगो। बट रियल फॉल्स ईगो का मतलब है कि यदि हम फॉल्स ईगो मतलब कि ये जो शरीर है यही मैं हूं, शरीर को ही आत्मा मान लेना, आत्मा बिल्कुल अलग है, उससे शरीर से कोई संबंध नहीं है, पर उसी में आत्मबुद्धि होना, किसमें, इंद्रियों में, कि मैं जो हूं इंद्रिय सुखी सब कुछ है, शरीर को ही मतलब आत्मा मान लेना या मन मान लेना, ये गलत है। शरीर को आत्मा मानना दैट इज कॉल्ड फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि को, वो तो तकलीफ है ही है, सब जानते ही हैं। सो अभी अब 9 बज गए हैं, ऐसे तो और भी श्लोक, यदि आपको कोई प्रश्न हो तो आप कभी पूछ सकते हैं। पर प्रभुपाद ने लास्ट लास्ट में जब वृंदावन में थे, और अपने धाम जाने से पहले वो श्लोकों का भागवत का और ये भगवत गीता का भी श्लोक उन्होंने उस समय समझाया था। पुरुष प्रकृतिस्थो ही मुंते प्रकृति ज्ञान गुणान कारणम गुण संघर्ष सद असद योनि जन्मसु, क्योंकि हम प्रकृति के वश में आकर के तो प्रकृति के गुणों से हम तादाम्यता करते हैं, वो तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है, तो ये प्रकृति के साथ संगति के कारण प्रकृति से संग हम कई तरह की योनियों में भटकते रहते हैं। 84 लाख योनियां क्यों होती हैं? प्रकृति के साथ किससे, जैसे मैंने बताया कि मांस खाने की इच्छा है तो हमें नया जीवन लेना पड़ेगा, कैसे, जो कि प्रीडेटर हूँ, प्रीडेटर है ना, शेर चीता या जो मांसाहारी हो चील वगैरह, इस तरह से बनना पड़ेगा। तो प्रकृति के गुणों में से संगति के कारण से हमें कई तरह के उत्तम और अधम योनियां प्राप्त होती है। यदि प्रकृति के गुणों से यदि हमें उच्च विचार हो, देवताओं जैसे विचार हो, तो हम देवलोक को जाएंगे, पर भगवत भक्ति करेंगे तो भगवान के धाम में जाएंगे। और इन भी 18वें अध्याय में भी इन चीजों का, गुणों का, ब्राह्मणों का क्वालिटी क्या है, ये सब दिया हुआ है। श्रम दम तप शौच्यम शांतिम आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्रह्म कर्म के, ब्रह्मों के ये कर्म है। जो अभी जो हमने श्लोक पढ़ा श्रीमद् भागवताम से, इसमें भी वही के 8 गुण दिए हुए हैं, सत्व सम दम सत्य अनुग्रह तपस्या तितीक्षा और यथा अनुभव, यानी भगवत संबंधी अनुभव प्राप्त करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो या कुछ जिज्ञासा हो या कमेंट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।